नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 90% से अधिक सुरंग निर्माण कार्य पूरा हुआ। राज्य के समस्त खाद्य गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए, मई माह से सभी जिलों में ई पॉस मशीन से होगा राशन का वितरण। उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ अधिकारी 25 से 27 अप्रैल तक नैनीताल में प्रदेश के विकास पर करेंगे मंथन। और राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में भारी उतार चढ़ाव से सर्दी और फ्लू के मामलों में वृद्धि की आशंका, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। और अब समाचार विस्तार से। 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 90% से अधिक सुरंग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उच्च सदन में किए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि ये रेल लाइन देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों से होकर गुजरेगी। इससे ऋषिकेश के साथ ही देवप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना कुल 16 मुख्य सुरंगों और 12 बचाव सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से 94 किलोमीटर लंबी 9 मुख्य सुरंगों और 88 किलोमीटर लंबी 8 बचाव सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। सुरंग निर्माण तेज करने के लिए 8 अतिरिक्त प्रवेश मार्ग भी बनाए गए हैं। सांसद भट्ट ने ऋषिकेश के श्यामपुर में बेली ब्रिज निर्माण की स्थिति को लेकर भी प्रश्न पूछा। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि श्यामपुर के पास 24 मीटर स्पैन वाले बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2014 में 2282 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 3664 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा। राज्य के सभी गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इसे तोलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इसी माह से प्रदेश के 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नई ईपॉस मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगले महीने से प्रदेश के सभी जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के सभी राशन विक्रेताओं को नई ईपॉस मशीनों का वितरण किया जा रहा है।
भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने उधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से और बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ईपॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलर तक पहुंचाएंगे ताकि जो है हमारे लाभार्थी को क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता न करना पड़े।
लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस धारणा को गलत बताया कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विपक्ष पर विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2013 में कांग्रेस शासन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गईं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ अधिकारी 25 से 27 अप्रैल तक नैनीताल में राज्य के विकास पर मंथन करेंगे। इस दौरान राज्य के संसाधनों, अवस्थापना, विकास और आजीविका के साधनों को बढ़ाने को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। तैयारियों को लेकर नैनीताल पहुंचे प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से इसमें भाग लेने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि योजनाओं में देरी के कारण बढ़ते बजट पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास कार्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
एक चिंतन शिविर हम लोग समय समय पर कराते हैं जिसमें सभी अधिकारीगण आते हैं एक जगह पर बैठ करके स्टेट के भविष्य की प्लानिंग की योजना और बनाते हैं। ये चिंतन शिविर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में हुआ था 2 साल पहले। एक सेकंड चिंतन शिविर हम नैनीताल में करने जा रहे हैं जिसके लिए ये कि नैनीताल को वेन्यू के रूप में चुना गया था। उसका थीम जो है अभी डिसाइड हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बढ़ोतरी हम लोग चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में क्या और आजीविका के जो साधन बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें करना है और जो सुशासन लाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी करना है, ये इसकी थीम रहेगी। और 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा 25, 26 और 27। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 3 दिन रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर के IAS के नए जो प्रोबेशनर ज्वाइन किए हैं वहाँ तक सारे अधिकारीगण यहाँ पर रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर प्रस्तुतिकरण होगा।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों खासकर कुमाऊं क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तापमान का ये अंतर करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक है और अगले 2 से 3 दिनों में भी ये बदलाव जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि रात और दिन के तापमान में इतना अधिक अंतर होने के कारण सर्दी और फ्लू के मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि तापमान का अचानक बदलाव सेहत पर असर डालता है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के बलीवाला, बल्लूपुर और ISBT फ्लाईओवर पर हुए हादसों को लेकर सरकार से विस्तृत ब्यौरा मांगा है। न्यायालय ने यह भी पूछा है कि किन अधिकारियों ने पहले से स्वीकृत 4 लेन फ्लाईओवर को घटाकर 2 लेन करने का फैसला लिया। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। जनहित याचिका में कहा गया कि 4 लेन की योजना को 2 लेन में बदलने से कई दुर्घटनाएं हुई जिनमें जानमाल की हानि हुई है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग को पानी, बिजली और नेटवर्क की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा गया। दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने और नदी में जमा मलबा हटाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सीवर टैंक पर सुरक्षा दीवार बनाने, तीर्थ पुरोहित आवास और अस्पताल निर्माण का काम भी जल्द पूरा करने को कहा। जिलाधिकारी ने बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शन लाइन पर बैठने की व्यवस्था और शौचालय निर्माण के निर्देश भी दिए। ब्रह्मकपाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी किनारे सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने और धाम में हो रहे कार्यों की हर दिन प्रगति रिपोर्ट देने को भी कहा गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने सभी विश्राम गृह प्रबंधकों को 4 धाम यात्रा से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। देहरादून स्थित केनाल रोड कार्यालय से वर्चुअल बैठक लेते हुए मुख्य कार्याधिकारी ने बताया कि तीर्थयात्रा शुरू होने से पहले मंदिर समिति के विश्राम गृहों में सौंदर्यीकरण, बिजली, पेयजल, सफाई, आवासीय सुविधाएं और CCTV लगाने जैसे जरूरी काम किए जा रहे हैं ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने सभी प्रबंधकों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का 90% से अधिक सुरंग निर्माण कार्य पूरा हुआ। राज्य के समस्त खाद्य गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाए गए। मई माह से सभी जिलों में ईपॉस मशीन से होगा राशन का वितरण। उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ अधिकारी 25 से 27 अप्रैल तक नैनीताल में प्रदेश के विकास पर करेंगे मंथन और राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में भारी उतार चढ़ाव से सर्दी और फ्लू के मामलों में वृद्धि की आशंका। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।